Hey, what's up, everybody? I got a new haircut. I think मैं थोड़ा ज़्यादा इंसान लग रहा हूँ. I welcome you all to the podcast number second. In this podcast, I'm going to speak about the most recent news-related topics, and it will be opinionated. होगा मेरा ओपिनियन जुड़ेगा इसमें. Nothing personal, but might sound थोड़ा सा offensive, but unintended. So अगर किसी को बुरा लग रहा है, last time लगा था एक जने को. अगर किसी को बुरा लग रहा है, तो this is for you.
Intro.
It's election season, guys. ये त्योहार का समय है भाई. ऐसा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, या फिर उनको कह सकते हैं प्यारे नरू.
नरू.
त्योहार तो हो गई obviously, क्योंकि competition तो है नहीं. Having said that, BJP has touched its lowest level of cheapness this election season. मुझे सब तो याद नहीं है, बट मैं कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ जो बहुत ही एपिक है. देखो, यूजिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल फॉर द आर्मी टू स्कोर अ पॉइंट इन द इलेक्शन इज नाइदर एक्सेप्टेबल नॉर कूल. सो आई डोंट नो मोदी जी और योगी जी को ये कब समझ में आएगा, बट ये थोड़ा सा गिरी हुई हरकत कर दी इन्होंने इस बार. बीजेपी एमपी साक्षी महाराज तो नेक्स्ट लेवल. वो तो बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी खुशियां छीन लूंगा और तुम्हारे मेरे सारे पाप तुम्हें दे दूंगा. अपने राजस्थान में एक बीजेपी कैंडिडेट है, उसका नाम है शोभा चौहान. वो अपनी दीदी ये कह रही है कि लाइक देखो, अब देखो तुम अगर हमको वोट दोगे तो हम तुम्हारे बच्चों की शादी करवा देंगे, मतलब चाइल्ड मैरिज से बैन हटवा देंगे मुझे. और टू बी मोर प्रिसाइज, देयर विल बी नो पुलिस इंटरवेंशन इन चाइल्ड मैरिजेस. अब मेनका गांधी तो देखो भाई मुस्लिमों की रही है.
अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा. फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने दो.
अब मुझे जैसे लग रहा है कि इफ शी विंस तो मुस्लिम्स का तो जीना हराम हो जाएगा यार, क्योंकि देखो बीजेपी वैसे भी पसंद नहीं करती उनको. योगी जी तो नफरत करते हैं, अमित शाह नफरत करते हैं, और अमित शाह योगी जी तो क्रिश्चियंस को भी नफरत करते हैं यार. सब नफरत करते हैं, हमें भी नफरत करते हैं, सब नफरत करते हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनआरसी एंड इन रिमूवल ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द कंट्री एक्सेप्ट फॉर बुद्धाज, हिंदूज एंड सिक्स. अब जिसको नहीं पता एनआरसी क्या होता है, इलीगल फॉरिनर्स को हटाने के लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे नाम दर्ज होते हैं, बट ये 100% सक्सेसफुल नहीं होता. इट इज ऑल्सो समटाइम्स इम्प्रॉपर रजिस्ट्रेशन. सो जस्ट इमेजिन that maybe your father's name is in the NRC but your name is not in the NRC, so you will be separated from your father, you will be left stateless. So implementation of this in the entire country is going to create a ruckus, but most probably I feel mera opinion isme ye hai ki this will be like BJP's most promises, not because I support this promise, but I think most of the BJP's promises are garbage.
Aap jo bol rahe ho behas ke liye sunne ke liye acha hai, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है.
एंड अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली ऑल दिस रबिश इज स्मार्टली इग्नोर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन.
मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से.
अरे भाई, अगर तुम सैटेलाइट रजिस्टर्ड चैनल को अगर तुम स्पेशल शो या फिर एडवर्टाइजमेंट चैनल रख करके बताओगे तो तुम बिक गए हो ना, तुम बिक गए हो. इट्स लाइक बीजेपी को जो पसंद आता है वो खरीद लेता है. अब ऑब्वियसली अब डिमोनेटाइजेशन का जो प्रॉफिट है और मुकेश अंबानी का जो डोनेशन है वो कहीं तो यूज करेंगे ना वो. चलो, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस क्रैप टू सम मोर क्रैप. Companies have started boycotting Brunei-owned hotels over anti-gay sex law. अब लोग ये ऐसे बोल रहे हैं कि हम तो देखो लोग तो फिर रहने वाले नहीं हैं वहाँ पे, ऐसे बोल रहे हैं कि हम US के लोग हैं, हम रहेंगे नहीं Brunei-owned hotels में, हम foreigner हैं, हम रहेंगे नहीं, हम check in ही नहीं करेंगे. अब companies बोल रहे हैं कि हमको तुम लोगों से tie up भी नहीं करना है. तो अब over enthusiastic Indians और बोल रहे हैं कि हम भी नहीं रहेंगे. भाई हम कैसे रहेंगे, अपने तो इंडिया में है ही नहीं होटल. मैं सोच रहा हूँ कि यार पैलेस्तीन में लोगों को मारा जा रहा है, इसराइली पैलेस्तीन को मार रहे हैं, US इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, US में रेसिज्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं. मैं तो ये सोच रहा था कि इंडिया अगर ये एलन डी जनरेस ने जिसने बोला ना कि भैया इन सबको बॉयकॉट कर दो, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इंडिया में तो मॉब लिंचिंग हो रही है गाय के नाम पे, ये सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स है नहीं. तो अगर एलन ये बोल दे कि यार इंडिया का टूरिज्म बंद कर दो क्योंकि वहाँ पे तो गायों के नाम पे लोग की बलि चढ़ रही है, वहाँ पे मुस्लिमों को मारा जा रहा है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स भी तो है ना. ब्रुनेई में तो अभी तक कोई मरा नहीं है, एंड देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स टू किल एनीबॉडी. ब्रुनेई इज क्वाइट पीसफुल कंट्री विद अबाउट 90% लिटरेसी रेट एंड 75+ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. high standard of living and has a rank of 31st on the Human Development Index. The rules in Brunei are in sync with Islamic norms, as it is the most observant Islamic nation in the Southeast Asia. Everybody except the people of Brunei has a problem with this law. Brunei bol diya kya maine? And what's up with banning these hotels, yaar? I mean, I'm not able to process this, because you seriously think that the Sultan of Brunei, who has implemented this law, is going to get affected agar tum wahan pe check-in nahi karoge? Kuch bhi. You're just promoting a less thought upon solution to this problem that will simply ruin the livelihood of 3,630 employees who are making a living out of those hotels. Selective outrage, which is harmful to the society. It's not helping anybody. It's just helping one particular community, just because you are selectively emotional about it. According to a BBC report, the app TikTok is not able to remove sexually inappropriate content and abusive accounts. देखो, मैं पहले तो ये बोलूंगा कि ये टट्टी ऐप जो है, इसको प्ले स्टोर से तो हटा ही देना चाहिए।
अगर तुमने यही आवाज इस चार दीवारी के बाहर कहीं निकाली होती तो तुम्हारे जबड़े हमारे हाथों में होते।
बट मुझे कभी कभी लगता है ना, दिस ऐप हैज बिकम एन एस्केप पॉइंट फॉर चिल्ड्रन एंड पीपल हु डू नॉट हैव अ लाइफ। चिल्ड्रन हु आर वेरी बोर्ड फ्रॉम देयर मोनोटोनस रूटीन। इट्स लाइक देखो बाहर जाके फुटबॉल बैडमिंटन खेलना तो अब बंद कर दिया अपन ने। अब घर पे अब बैठ के अपन कह रहे हैं सांप सीढ़ी भी नहीं खेल रहे। तो इट हैज बिकम बट द प्रॉब्लम इज इट हैज आल्सो बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू सेक्सुअली अब्यूज अदर पीपल। इट्स लाइक देखो अब अपन वैसे ओवर सेंसिटिव हैं, पर हर चीज़ में अपन ओवर सेंसिटिव हैं। अब तो हर चीज़ पे बुरा लगता है, हर चीज़ सेक्सुअल हरासमेंट है। यू ब्यूटीफुल से लेकर यू हैव ब्यूटीफुल तक कोई लाइन नहीं है बीच में, सब सेक्सुअल हरासमेंट है। ठीक है,
टाइम बहुत खराब आ गया।
अब ऐसे माहौल में अगर 13-14 साल की लड़कियां ऐसे करेंगी तो ऑब्वियसली पीडोफाइल्स उसमें अटैक करेंगे। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए? टिकटॉक को लेनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू अ बीबीसी रिपोर्ट, टिकटॉक इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स नॉट रिमूविंग दीज अकाउंट्स, और मे बी इट्स ट्राइंग बट इट्स नॉट सक्सेसफुल ऑल द टाइम। अब कौन सा समझदार पेरेंट होगा जो ये चाहेगा कि उनका बच्चा ऐसी ऐसी हरकतें करे?
Control with
that. Moving on, काले गड्ढे का विचित्र चित्र बाहर आ गया है। ब्लैक होल इमेज हैज बीन डिस्कवर्ड। लोग इसे मेंदू बड़ा, बिल्ली की आंख, अलग अलग टाइप से अपलोड कर रहे हैं, मीम बना रहे हैं। अब मैं बोलूँगा कि देखो, 200 जनों की टीम थी जिन्होंने ये अपना ये डिस्कवर किया है, और इसमें से 40 औरतें थी। बट आप और मैं एक ही जने को जानते हैं, केटी बोमिन को, who accidentally became the face of the whole project. And अब बोलेंगे लोग accidentally कैसे? This is not ये मेरी बात नहीं है, ये NYT की रिपोर्ट है। Like she led the development of an algorithm to take picture of a black hole, which was ultimately not used to create this particular image. See, my opinion on this is when you're trying to encourage more women in STEM fields, you should highlight the truth behind any success. Giving the entire credit to any one individual, be it a man or a woman, harms the effort of the collaboration. I also feel that diversity should be highlighted. Of course, it's a beautiful thing that a woman is there in every step of a new discovery. So I also feel that the diversity should be highlighted and the due credit should be given to each and every woman who contributed. And Katie agrees to this. And she has admitted that she should not be given the sole credit. All this should be avoided. Okay, that's all folks. That's all what I have for this week. So my name is Vinu Joseph. You're listening to Trash Talk. See you next week. Boy. Welcome to Trash Talk. Trash Talk is my weekly podcast where I discuss about newsworthy topics. And this week I'm going to discuss about why I feel the Election Commission cannot be trusted in elections 2019. Experts say you cannot hack EVMs, but there's another way of investing your virus in elections, which is hacking the Election Commission itself. Reason number one for the same: giving clean chits to BJP leaders regardless of what statements they make during the election campaigns, whether it was Modi ji ki sena by Yogi Adityanath or vote demanding by mentioning Pulwama incident by Modi ji himself. But for Election Commission,
Lotus is Mr. Clean, Mr. Clean. Reason number 2. Viral videos of EVM machines being transported from one place to the other, added up with the silence of Election Commission on the same, making people believe that everything is under control, is not helping. As according to the EC guidelines, all EVM machines, whether used or unused, should be accompanied by armed personnel, which is clearly not the case here. Reason number 3. Well, it always happens, and I'm glad that at least one out of the other members of any institution stands up against infestation, be it Supreme Court or Election Commission. I'm talking about Ashok Lavasa, who stood up against the consistent Mr. Clean image that Election Commission was painting on the Lotus. But sadly, due to 2-1 in the Election Commission, he was also shut down. Reason number 4. Forceful voting in villages. Among all the viral videos doing rounds on social media this election, there are also some clips of party workers or election officers forcing people to vote for a particular party. I'm not saying they're forcing them to vote for BJP. No, they can be Congress workers too, if at all the video is legitimate. On this, the Election Commission said, wherever you see all this happening, conduct a re-poll. But what about the rest of the country? Reason number 5. Sudden appearance and disappearance of Namo TV. Initially, when the Election Commission postponed the release of Narendra Modi the movie, it also put a hold on Namo TV. But in just a short period of time, it rolled back and said, we'll let you know, what we have decided. And now, since elections is over, Namo TV has disappeared from all DTH. Sources also say the major reason to postpone the release of the movie is because of the brain tumor acting of Vivek Oberoi, which could have backfired them altogether. The last reason, reason number 6, disinterest towards VVPAT. The VVPAT stands for Voter Verifiable Paper Audit Trial. It's a machine that takes a printout of your vote casted so as to avoid any tampering. But Election Commission is not quite happy and supportive towards the system, and the reason for the same is lack of people and waste of time. I'm just wondering who the fuck is so impatient about the results. I am not. It's a huge decision, right? Friends, election results are today. I have no idea what's going to happen, even though it's obvious. But I do hope and pray that whatever the decision is, it is for the benefit of the hardworking in this country. That's all. Thanks for staying. Thanks for tuning in. See you next week. Bye-bye. Welcome to Trash Talk. Trash Talk is my weekly podcast where I discuss about newsworthy topics. And this week I'm going to discuss about why I feel the Election Commission cannot be trusted in elections 2019. Experts say you cannot hack EVMs, but there's another way of investing your virus in elections, which is hacking the Election Commission itself. Reason number 1 for the same. Giving clean chits to BJP leaders regardless of what statements they make during the election campaigns, whether it was Modi ji ki sena by Yogi Adityanath or vote demanding by mentioning Pulwama incident by Modi ji himself. But for Election Commission, Lotus is Mr. Clean, Mr. Clean. Reason number 2. Viral videos of EVM machines being transported from one place to the other, added up with the silence of Election Commission on the same, making people believe that everything is under control, is not helping. As according to the EC guidelines, all EVM machines, whether used or unused, should be accompanied by armed personnel, which is clearly not the case here. Reason number 3. Well, it always happens, and I'm glad that at least one out of the other members of any institution stands up against infestation, be it Supreme Court or Election Commission. I'm talking about Ashok Lavasa, who stood up against the consistent Mr. Clean image that Election Commission was painting on the lotus. But sadly, due to 2-1 in the election commission, he was also shut down. Reason number 4. Forceful voting in villages. Among all the viral videos doing rounds on social media this election, there are also some clips of party workers or election officers forcing people to vote for a particular party. I'm not saying they're forcing them to vote for BJP. No, they can be Congress workers too, if at all the video is legitimate. On this, the Election Commission said, wherever you see all this happening, conduct a re-poll. But what about the rest of the country? Reason number 5. Sudden appearance and disappearance of Namodi. Initially, when the Election Commission postponed the release of Narendra Modi the movie, it also put a hold on Namo TV. But in just a short period of time, it rolled back and said, we'll let you know, what we have decided. And now, since elections is over, Namo TV has disappeared from all DTH. Sources also say the major reason to postpone the release of the movie is because of the brain tumor acting of Vivek Oberoi, which could have backfired them altogether. The last reason, reason number 6, disinterest towards VVPAT. The VVPAT stands for Voter Verifiable Paper Audit Trial. It's a machine that takes a printout of your vote casted so as to avoid any tampering. But Election Commission is not quite happy and supportive towards the system, and the reason for the same is lack of people and waste of time. I'm just wondering who the fuck is so impatient about the results. I am not. It's a huge decision, right? Friends, election results are today. I have no idea what's going to happen, even though it's obvious. But I do hope and pray that whatever the decision is, it is for the benefit of the hardworking in this country. That's all. Thanks for staying. Thanks for tuning in. See you next week. Bye-bye.